ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਲਸਿਲਾਵਾਰ ਜੋ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਿ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਪ ਜੀ, ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ ਜ਼ੀਨਾ। ਔਰ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿੱਤੇ ਦੋ ਸਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਇਹ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਇਹ ਵੀ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪੌੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਮੈਦਾਨੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ ਕੁਝ ਸਹਾਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਸਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਤਸੰਗ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਧਤ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਖੰਡ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਆਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਐਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਪ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਬਾਨ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਖੜਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਰਤ ਧਿਆਨ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਸਮਝੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਉਹ ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸੌਣਾ ਜਾਗਣਾ ਹੱਸਣਾ ਰੋਣਾ ਸਭ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੇਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਸੁਰਤ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੰਜ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਸਰਮਖੰਡ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਇਹ ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਘੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਐਸਾ ਘੜਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਘੜਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਇਤਨੀ। ਪਰ ਧਰਮਖੰਡੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਧਰਮਖੰਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਜੋ ਧਰਮਖੰਡ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਗਲਤ ਬੋਲੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਗਲਤ ਸੋਚੇਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੀ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਏ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਸ਼ ਖੇਡੇ। ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਸ਼ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ, ਸਤਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪੁਰਖਾ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਬਥੇਰੇ ਥਾਂ ਨੇ, ਥੀਏਟਰ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਵੇਖ, ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਕਲੱਬ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਥੀਏਟਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਰ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਸਤਸੰਗ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਲੱਬ, ਕੋਈ ਆਮ ਥਾਂ, ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ। ਪਰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਐਸੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਭਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਭਲੇ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਝਗੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦਾ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਲੱਬ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ? ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ? ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ? ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਧਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਛੜਿਆ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਨਾਤਨੀ ਮੰਦਰ ਹੋਵਣ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਹੋਵਣ, ਜੈਨ ਮੰਦਰ ਹੋਵਣ, ਬੌਧ ਮੰਦਰ ਹੋਵਣ। ਮੰਦਰ ਸਿਰਫ ਬਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਬੜੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਾਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਜਾਪ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਬ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਅਦਬ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਅਦਬ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਅਦਬ। ਅਦਬ ਪਹਿਲਾ ਕਰੀਨਾ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਕਰੀਨੋ ਮੇਂ, ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਬ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਦਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਦਬ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਦਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਦਬ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ, ਇਤਨੂੰ ਗਲਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵੱਈਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਅਗਨ ਬੂਝਤ ਜਲ ਸਰਤਾ ਕੇ ਨਾਵ ਮੇਂ ਜੋ ਆਗ ਲਾਗੇ ਕੈਸੇ ਕਹਿ ਬੁਝਾਈਏ। ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਝਾਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਈਏ? ਚੋਰਨ ਕੇ ਤਰਾਸ ਓਟ ਲੀਜੀਅਤ ਕੋਟ ਗੜ ਗੜ ਮੇਂ ਜੋ ਲੂਟ ਲੀਜੇ ਕਹਾਂ ਕਤ ਜਾਈਏ। ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਭਜਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਥਾਣੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਸੇ ਮਾਇਆ ਡਰ ਡਰ ਪਤ ਹਾਰ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵੇ ਤਾਹਾਂ ਜੋ ਵਿਆਪੇ ਮਾਇਆ ਕਹਾਂ ਠਹਿਰਾਈਏ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਅਨਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਈਏ? ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਅਨਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਇਹ ਰਸ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਖਲੜੀ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਇਆ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਖੰਡੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਇਸਨੇ ਦੂਜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਹਾਲਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਖੰਡ, ਸੂਝ ਸਮਝ ਦਾ ਖੰਡ, ਚਾਨਣ ਦਾ ਖੰਡ। ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਤੁੱਛ ਨੇ, सतगुर की बाणी ऐसा कहती है कि रब नाल जुड़न वास्ते अगर अवतार भी दीवार बने तो उन्हों एक पासे कर दो। वो भी क्यों दीवार बने? भगत कबीर कहने तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद को नंदन काकोरे। तुसी कहंदे हो नंद दा नंदन भाव कृष्ण भगवान है, परमात्मा है। नंद दा नंदन, नंद दा पुत्र से, तो फिर नंद किस दा नंदन है? फिर ओ नंदन किस दा नंदन है? गल किथे मुकाओगे, गल किथे खत्म करोगे? भाई गुरदास जी दा एक ज्ञान खंड दा सवैया मैं थोनू सरवण करावां ते फिर सरम खंड दी गल करिए। ज्ञान खंड विच पहुंचा होया मनुख, मनुख नू रब नहीं मनेगा, क्योंकि जे मनुख नू रब मन लईए ते मनुख दा जन्म भी है उहदा मरण भी है। फिर रब दा जन्म भी हो गया, रब दा मरण भी हो गया। ते सो मुख जले जित कहे ठाकर जोनी, उहदी रसना जल जानी चाहीदी है। जिहड़ा कहिंदा रब जल जम पिया है, परमात्मा दा जन्म है, ज्ञान खंड विच पहुंचा होया मनुख, मनुख नू रब नहीं मनेगा। ये ठीक है कि परमात्मा की जोत सारे च, सब में जोत, जोत है सोए जिसके चानन, सब में चानन होए। घर दे प्रकाश आया है, चानना आया है, ठीक है चानना आया है, पर हुण कोई आखे सारे दा सारा सूरज मेरे घर दे च आ गया, ये किस तरह मन लई? नहीं आ सकता। जमीन नालों 60,000 गुणा वड्डा है सूरज, तेरे घर दे च किस तरह आएगा? उहदा नूर आ सकता, उहदा प्रकाश आ सकता, उहदी धुप आ सकती है। सूरज तेरे निक्के जिहा मकान विच नहीं आ सकता, वह तो समुची धरती विच भी नहीं आ सकता, जमीन भी छोटी उस वास्ते। वह जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है उसकी झलक तेरे अंदर आ सकती, उसकी अंश तेरे अंदर आ सकती, पूरे का पूरा नहीं। इस वास्ते ज्ञान खंड विच पहुंचया होया मनुख, मनुख नूं रब नहीं मनता। भाई साहब भाई गुरदास जी का एक सवैया तुहाडे सामने रखा ते अगां चलीए। भाई साहब कहंदे ने जाके अनेक फनगर भार धरन धारी, ताहे गिरधर कहे कवन वडाई है। हिंदुस्तान विच इक परमात्मा दा नां है गिरधर। गिर कहंदे ने पहाड़ नूं, पहाड़ दे चुकण वाला। श्री कृष्ण नूं कहंदे ने गिरधर। ते हुण भाई साहब कहंदे ने जिस परमात्मा ने ये सारी जमीन चुकी, खंड ब्रह्मंड चुके, उस परमात्मा नूं कह देना पहाड़ दे चुकण वाला, ये कोई महिमा तो नहीं, ये कोई उसकी वड्याई तो नहीं। कहिंदे नूं उन्हें एक उंगल दे नाल गोवर्धन पर्वत चुक लिया सी। दरअसल ऐसा जापदा मैं गोवर्धन पर्वत वेख्या, उस पासे हड़ काफी आंदे, जमुना जब चढ़ती सी काफी इलाकों नूं बर्बाद करती सी। तो गोवर्धन नामक कस्बे नूं बचाण वास्ते जापदा है कोई बंद बनाया है, और श्री कृष्ण ने बनवाया होना है, क्योंकि इसे तरीके नाल ओह लगदा थोड़े दिनों च बन गया होना है उन्हां दी प्रेरणा नाल, भी उंगलां दे इशारे ते कम हो गया, एक प्रतीक सी। बाद च कह दिता गया पहाड़ उन्हां ने उंगल ते चुकया, ना पै गया गिरधर पहाड़ दे चुकण वाला। भाई साहब कहिंदे ने चलो मन लैंदे आ, जाके अनेक फनगर भार धरन धारी। ऐ मनुख तू यह भी कहना भी ये जिहड़ी जमीन है शेषनाग ने चुकी हुई है, जिहदे हजारा फन ने। शेषनाग का मतलब है सहसनाग, सहस कहिंदे हजार मूह, हजारा मूहां वाला सर, भी उहने जमीन चुकी है। ते भाई साहब कहिंदे एक पासे तू कहना है शेषनाग ने जमीन चुकी हुई है, दूसरे पासे तू कहना है भगवान ने पहाड़ चुकया है। तो भगवान वड्डा होया कि सप वड्डा होया? शेषनाग वड्डा होया। जाके अनेक फनगर भार धरन धारी, ताहे गिरधर कहे कमन बड़ाई है। जाको एक बावरो विश्वनाथ कहावे, ताहे ब्रजनाथ कहे कौन सो बताई है। एक बावरो शिवजी नूं भोला नाथ कहंदे ने, भाई बड़ा ही भोला है, बहुत भोला है, छेती वर दे दिंदा है, छेती शराब दे दिंदा है, बहुत भोला है। भोला नाथ कहंदे ने उसनूं, बहुत भोला है। ते भोला नाथ करके उहदा नाम बावरा भी पिया है। नाले उसनूं कहंदे ने विश्वनाथ, सारे विश्व दा नाथ मालिक। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਵਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ। ਬ੍ਰਿਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮਥੁਰਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਮੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਨਾਥ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਵਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ। ਜਾਂ ਕਿ ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ ਕੇ ਬਿਥਾਰੇ ਜਗ ਤਾਹੇ ਨੰਦ ਨੰਦਨ ਕਹੇ ਕੌਣ ਸੋ ਬਤਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹ ਨੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵਡਾਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਤ ਹੈ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਧ ਮੂੜ ਐਸੇ ਅਰਾਧੇ ਤੇ ਮੌਨ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸਤਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਗਿਰਧਰ ਗਿਰਧਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਕਹਿ ਕੇ, ਨੰਦ ਨੰਦਨ ਨੰਦ ਨੰਦਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਪਮਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਜਾਨਤ ਹੈ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਧ ਮੂੜ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੀਆਂ, ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਆਂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਨਤ ਹੈ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਧ ਮੂੜ ਐਸੇ ਅਰਾਧੇ ਤੇ ਮੌਨ ਸੁਖਦਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ, ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਪਸਰੀ ਹੋਈ। ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਕਦੀ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਅਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਜਨਮਾ ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਮਰਨ ਹੈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਜਨਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਅਮਰਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਸਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਬਾਵਨ ਕੋਟ ਜਾਂ ਕੇ ਰੁਮਾਵਲੀ ਰਾਵਣ ਸੈਨਾ ਜੈ ਤੈ ਛਲੀ। ਜਿਸਨੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਛਲ ਕੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਰਾਮ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਹਿਸ ਕੋਟ ਬੋ ਕਹਿਤ ਪੁਰਾਣ ਦਰਯੋਧਨ ਕਾ ਮਥਿਆ ਮਾਨ। ਜਿਸਨੇ ਦਰਯੋਧਨ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੇਖੇ। ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੇ ਕੀਟ ਕੋਟੇ ਬਣਾਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਕਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਚ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਨਹੀਂ। ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਮਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਖਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਮਾਗ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਦਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਧਰਮ ਖੰਡੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। जब अपने घर में उसने मंदिर बना लिया, घर घर अंदर धर्मशाल होवे, कीर्तन सदा वसोवा, जिथे कीर्तन होवे, जिथे बंदगी होवे, जिथे रब का ना जपया जाए, घर मंदिर बन जाता है, घर धर्मशाल बन जाता है, उसके घर नू गुरुद्वारा बना लेंदा है। ते जब घर गुरुद्वारा बन गया, घर मंदिर बन गया, क्षमा करने उसने गुरुद्वारे नू फिर भ्रष्ट थोड़ी करना है, गुरुद्वारे का अनर्थ थोड़ी करना है। उन्हें तो घर नू इतना पवित्र बना लिया, घर ही धर्मशाल बन गई है। उन्हें तो घर नू इतना पावन बना लिया, घर ही मंदिर बन गया। ते जब घर मंदिर बन गया है, तो क्षमा करने उसने गुरुद्वारे नू क्लब नहीं बनाना, फिर गुरुद्वारे नू फिर उसने पब नहीं बनाना, उसने गुरुद्वारे नू कोई प्ले ग्राउंड नहीं बनाना। क्यों? उन्हें पता है कि गुरुद्वारा किस वास्ते, मेरा जीवन किस वास्ते, मेरी शक्ति किस वास्ते। ए जिहड़ियां साडे सामने मैं विचार रख रहे हां, कुदरत ने उंज ते जो कुछ जिस ढंग नाल बनाया ठीक, होर हजारां अवगुण मैं कबूल कर लियांगा, पर किसी व्यक्ति नूं निशाना बना के मैं गल नहीं करदा हुंदा, सच नूं सामने रख के अर्ज करदा हुंदा इतनी गल। ते फिर मैनू इस गल की कोई परवाह नहीं कि किसी का दिल दुखदा है या किसी का दिल सही है। दरअसल गल जे गुरबाणी ते पूरी उतरदी है तो कम से कम इतनी है, मनुख गुरु की प्रसन्नता का पात्र ते बनता है, बस इतनी बुख जरूर है। और जे किधरे ये ख्याल पैदा हो जाए एक मनुख दे अंदर, तो फिर कहना सफल हो गया, आखी हुई गल सफल हो गई। तो मैं अर्ज करा, जो गुरुद्वारे का गलत इस्तेमाल कर रहा है, समझ लो जिंदगी का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो जो जिंदगी का गलत इस्तेमाल कर रहा है वह धर्मखंडी नहीं है, वो बिल्कुल धर्मखंडी नहीं, पहले पड़ाव ते भी नहीं आया। और जे ज्ञान खंड, शर्म खंड, कर्म खंड, सच खंड, ये बड़ी दूर दियां गल्लां ने, बहुत दूर दियां गल्लां। जनाब शेख सादी कहंदे ने, दफ्तर तमाम गुजस्त वफाया रसीदे उमर, मां हम चुना दर अवल वसफ तो मांगा है। ऐ खुदा परिपूर्ण परमात्मा, जिंदगी दा साजो समान मुक चले है, साजो समान खत्म होने लगा, ते मैं तेरे रस्ते ते अजे एको ही कदम रखे। रस्ता बहुत लंबा, बहुत लंबा, जिंदगी बहुत थोड़ी रह गई, बहुत थोड़ी रह गई, ते चलिया मैं एक कदम हां। कहना पएगा शेख सादी, तू धनता दे योग है, एक कदम चलिया ते हैं, मैं ते ओ बंदे देखदा पिया जिन्हां दे पैर कबर दे च पहुंचण लगे ने, ओ भी एक कदम कोई नहीं चले। तू धनता दे योग है, एक कदम चलिया ते है ना, कम से कम उस मार्ग दा पांदी ते है ना, तू उस रस्ते दा चलण वाला राही ते है, ओ भी देखे ने जिहड़े एक कदम भी नहीं चले, हालांकि कदम कबर दे च पैंदे पए, मौत बिल्कुल नेड़े। दफ्तर तमाम गुजस्त वपाया रसी दे उमर, कई दफा मरण लगे, रिश्तेदार कह देने उधर श्वास निकलते पे, उन्होंने भी वाहगुरु वाक, हूं की वाहगुरु खाक आख है, हूं तो दरिया के तूफान आ गया, हूं तो समुद्र के तूफान आ गया, हूं किस तरह पार होगा, हूं किस तरह बेड़ी ठेलेगा, इत भर सरवर जब उछले तब तरण दे, जब भरिया होया सरोवर उछल पवे, तूफान आ जाए, जिस तरह उछलदा है पानी सागर विच, जहाजां दा चलना औखा हो जांदा है, जिंदगी विच जो श्वास उछलदे ने बाहर निकलदे ने, उदों वाहिगुरु आखना बहुत औखा, आले दुआले लोकी खड़े होंदे ने मुरदे दे, कहिंदे ने वाहिगुरु आख, उहदे श्वास निकल रहे होंदे ने, और उस वक्त उसनू पता चलदा है बड़ी कीमती जिंदगी सी व्यर्थ चली गई, बड़ा कीमती जीवन सी व्यर्थ चला गया। उर्दू दा एक शायर कहिंदा है, ना देखने की तरह हमने जिंदगी देखी, चिराग बुझने लगा तो रोशनी देखी, जिंदगी का दीवा बुझण लगा अज पता चलिया। और यकीन जानो जो बुझदा है उदों ही पता चलता, पहले नहीं पता चलता, पहले एवें ही जल जाता, उदी रोशनी तो लाभ ही नहीं लेंदे, जिंदगी का कदी सही इस्तेमाल ही नहीं करते। जीवन जदों हथों जान लगता है, दीवा जद बुझण लगता है, उदों ख्याल आंदा लै दीवा ते गया, जोत ते गई, रोशनी ते गई, पर उस तो पहले समझना है, ता जाके गल बनेगी। तो चलना की है, वाहगुरु वाहगुरु आखी जाना, एदे च ध्यान जोड़ना, ये चलना है, बस यही चलना है। और ऐसा जिहड़ा मनुख चल पे और पहले पड़ा ते पहुंचेगा, पहला पड़ा की धर्मखंड, धर्मखंड का मतलब कि वो जिंदगी का सही इस्तेमाल करेगा। गलत खावेगा नहीं, गलत बोलेगा नहीं, गलत वेखेगा नहीं, गलत सुनेगा नहीं, गलत पासे चलेगा नहीं, गलत करेगा नहीं। हर इंद्रे का सही इस्तेमाल करेगा, हर जिंदगी इंद्रे की सही वरतों करेगा। धर्मखंडी जाप जारी है, पहुंच जाएगा ज्ञान खंड। ज्ञान खंड जो पहुंचेगा उसनों पता चलेगा कि रब एक व्यक्ति नहीं, वो तो एक शक्ति है। असी अरदास करते ना प्रथम भगवती सिमर के, भगवती का मतलब की शक्ति, ताकत, पसरी हुई ताकत। परमात्मा एक भगवती है, परमात्मा एक शक्ति है, परमात्मा एक ताकत है और पसरी हुई है। उस निराकार तो ही तरह तरह के आकार बनते हैं, ते सारे आकार फिर उस निराकार में समा जाते हैं। जब उर करक करा कर तारा, प्रजा धरत तब दे अपारा, जब आकर्क करत हो कब हूं, तुम में मिलत देह दर सब, फिर तेरी सारी देही दे चलीन हो जाते, सारा आकार निराकार दे चलीन हो जाता। ज्ञान खंड विच पहुंच के यह मनुख नु पता चलता है केते पौं पानी दे संतर, केते कान महेश, केते बर में गाड़त गड़िए, रूप रंग के वेश, कई कान ने, कई महेश ने, कई सिद्ध बुद्ध नाथ ने, कई देवियां ने, कई दुर्गा ने, बड़ा कुछ लंबा चौड़ा पसारा उसके सामने प्रगट हो जाता है। इस वास्ते व्यक्ति का पुजारी नहीं रह जाता, व्यक्ति का सत्कार जरूर करता है, व्यक्ति का पुजारी नहीं होता। इतनी मैं अर्ज करता, पिता का सत्कार करता है, वड्डे भरा का सत्कार करता है, गुरसिख का सत्कार करता है, लेकिन पुजारी नहीं होता। पुजारी तो अकाल दा, अकाल दा, सिर्फ अकाल दा। जिहड़ियां गल्लां ने ना कि पूजा अकाल दी, दीदार खालसे का, परचा शब्द, ये तीन गल्लां सानू दित्तियां ने। दीदार किहदा करना है? गुरु का दीदार करना होवे केदा, खालसे दा दीदार। और फिर जो टेक रखनी है, भरोसा रखना है, जिस तो सारी शिक्षा दीक्षा लेनी है, वो शब्द परचा शब्द का, दीदार खालसे दा, पूजा अकाल दी, प्रस्तिश अकाल दी। ये तीन गल्लां साडी झोली च पाईयां ने गुरदेव ने। ते जे पूजा व्यक्ति दी है, ते भरोसा किसे बंदे दा है, तो खिमा करनी है, सिख नहीं है तो गल खत्म। यह ज्ञान खंड कितने पहुंचे, इन गल समझ ही नहीं आई, इन पता भी नहीं। तो ज्ञान खंड सारे दृश्य सामने आ जाते हैं, जाप जारी है, मनुख पहुंच जाता है सरम खंड। मैं फिर अर्ज करा, जप जी की बाणी पौड़िया की बाणी, तो पौड़िया बनाई जा उपर चढ़ने वास्ते, सुरत न चढ़ाना है, तो सुरत किसी की चढ़ रही है। फिर मैं लफ्ज दोहरा दें, पहचान यह होगी वो अपनी जिंदगी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, कतई ही नहीं करेगा। कि जब जिंदगी का नहीं गलत इस्तेमाल करता, वह किसी चीज का भी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, हर चीज का सही इस्तेमाल करेगा। जिवें मैं अर्ज की थी, गन्ने विच कादर करीम ने रस पा दिता, ये गुड़ बनाया जा सकता है, ये शक्कर बनाई जा सकती है, ये शराब भी बनाई जा सकती। हुण शराब बना लेनी गलत इस्तेमाल है गन्ने का, अंगूर का, पर खंड बना लेनी सही इस्तेमाल है। जिंदगी नू जहर भी बनाया जा सकता है, जिंदगी नू अमृत भी बनाया जा सकता है। और जहर ते अमृत विच कोई बहुत दूरी नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का फैसला, बिख अमृत बसे एक संगा, बिल्कुल नेड़े ही नहीं, पड़ोस च नहीं, स्वर्ग ते नर कोई बहुत दूर नहीं है, अमृत ते जहर कोई बहुत दूर नहीं है। उसे ही अंगूरों दे शराब छुपी पई है, उसे अंगूरों के रस छुपया पे, उसे ही गन्ने के शक्कर छुपी पई है, उसे ही गन्ने के शराब छुपी पई है। ऐसे ही जिंदगी जहर है, ऐसे ही जिंदगी अमृत है। तू अमृत पीना है कि जहर पीनी है, मर्जी है तेरी। बिख अमृत बसे एक संगा, अमृत ते जहर विच कोई बहुत दूरी नहीं है। जीवन नू जहर भी बनाया जा सकता है, जिंदगी नू अमृत भी बनाया जा सकता है, पर जहर बनाना आसान है, क्योंकि जहर बनाने का मतलब है जिंदगी नू तोड़ना, बर्बाद करना। अब मेरे सामने टेप रिकॉर्डर पे है, हुण मैनू कोई आखे तू बना, मैं किस तरह बनावा, मैनू समझ ही नहीं, सूझ ही नहीं। ये तो पूरा इलम चाहिए, पूरा ज्ञान चाहिए, फिर पूरे साधन चाहिए ना, तां जाके बनेगा। पर मैनू कोई आखे तोड़ दे तो मैं उन्हें चुक के मारा थले टुट गया और गल खत्म। तोड़ना तो ऐसा जिंदगी नू बर्बाद करना है, तोड़ना बिल्कुल मामूली गल है। पर बनाना है, सवारना है, बड़ी औखी गल है, बहुत औखी गल है। सारे साधन जुटाने पैणगे, मेहनत जुटानी पैगी, सूझ समझ जुटानी पैगी, तां बंदा जिंदगी नूं सवारेगा। जिंदगी नूं बिगाड़ना ते बहुत आसान है, तोड़ना ते बहुत आसान है। किसी चीज नूं भी तोड़ देना, एक बच्चा भी तोड़ सकता है, पर हर बंदा बना नहीं सकता। ते तोड़ना कोई कला नहीं है, जोड़ना कला है। इतनी मेहनत करते हैं। सरम खंड दे विच मनुख की जिहड़ी हालत बनती है, पातशाह फरमान करते हैं, सरम खंड की बाणी रूप, तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप। यह बंदा सरम खंड विच पहुंच गया की पहचान। सरम का मतलब है मेहनत, संस्कृत का शब्द है सरम, ते शर्म के अखरी अर्थ ने मेहनत, मुशक्कत, क्योंकि नाम लियाना भी मुशक्कत है। जिन्नी नाम लियाया गए मुशक्कत वाल, बड़ी मुशक्कत है, बड़ी मेहनत है, बड़ी साधना है। शर्म लफ्ज पर्शियन दा होवे, इहदे अर्थ बन जाने लज्जा, हया, शर्म। पर शर्म शब्द संस्कृत दा होवे, इहदे अखरी अर्थ बनदे ने मेहनत, मुशक्कत। मुशक्कत दा खंड, मेहनत दा खंड, तीसरा खंड, वो तीसरी चढ़ाई बड़ी बिखड़ी है, बहुत बिखड़ी है। हेमकुंड साहब जिहड़े चढ़दे ना, ते जदों अगों 1000 पौड़ियां आउंदियां, बाकी ते सहजे सहजे लोकी चढ़ जांदे, पर वो जिथे 1000 पौड़ियां आंदियां उत्थे चंगे चंगे रह जांदे, चंगे चंगे। मैं 2 पौड़ियां चलदा सी, तीसरे ते बैठ जांदा सी, 2 चढ़ां फिर तीसरे ते बैठ। उन्हें 1000 पौड़ियां नूं मैं 4 घंटे अबूर किया, पिछों थके होया सी, पौड़ियां देख के हैरान हो गया, पूछिया भाई किन्नियां ने, कहन लगे 1000 ने। हुण 1000 ने पौड़ियां, 2-2 चढ़दा सी मैं, क्योंकि पिछे 10-11 मील का पेंडा तय करके आए सी। इन्नी चढ़ाई, इन्नी बिखड़ी चढ़ाई, शर्म खंड एक बिखड़ी चढ़ाई है, बहुत बिखड़ी, और इत्थे डिगण का भी डर है। इत्थे मनुख सुस्त भी हो सकता है, इत्थे मनुख रुक भी सकता है, क्योंकि बड़ी करड़ी चढ़ाई है। ज्ञान ते बहुत मिल गया, बड़ी समझ मिल गई बंदे नूं कि परमात्मा व्यक्ति नहीं, एक शक्ति है, ते जिंदगी दा हुण इस्तेमाल भी सही कर रहा है। धर्म खंड चो लंघ चुके है, ज्ञान खंड चो लंघ चुके है, हुण पहुंचे है शर्म खंड विच। बड़ी मेहनत है। मेहनत की है? अपने आप नूं घड़ना। की घड़ना है? साहब कहिंदे ने तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़िए सुरा सिधां की सुध। साडे शरीर दे अंदर एक अंतिशकरण परिपूर्ण परमात्मा ने पा दिता, जिन्हों कहिंदे ने मन बुद्ध चित अहम, चतुष्टा अंतःकरण, इसनों कहिंदे ने चतुष्टा अंतःकरण। अंदर एक शक्ति कम करती है, उन्हों 4 हिस्सों दे तकसीम किया गया है। जब बंदा फुरनिया विच बैठा होवे, फुरने अंदर पैदा हो रहे विचार, ये मन है। ते जद बंदा किसी की याद विच बैठा होवे, ये चित है। ते जद बंदा किसी फैसला कुन हालत विच बैठा होवे, कोई निर्णय करना है, कोई फैसला करना है, उदों बुद्ध है। ते चौथा है अहम, मैं हां और मैं होवां, ये चौथी शक्ति का चौथा हिस्सा है। मनुख के अंदर अहम भाव हर वक्त रहिंदा है, मन बुद्ध चित अहम। हुण इन्हां चारां नूं घड़ना है इस शर्म खंड विच, यह कम बहुत औखा है। शब्द के आसरे से गुरुद्वारा टकसाल है, इतने घड़ना, ये टकसाल है। हुण मैं देखना टकसालां बड़िया खूबसूरत ने, कई देशों विच, कई शहरां विच, अपने देश विच बहुत खूबसूरत टकसालां ने, पर मन घड़िया जा रहा होवे, बुद्ध घड़ी जा रही होवे, कुछ घड़िया नहीं जाता, टकसालां ने, सिर्फ टकसाला। ते टकसाल बनाई होवे, ते जिस वास्ते टकसाल बनाई है उदा इस्तेमाल ना होवे, ते गलत नहीं ना बनी फिर। सरम खंड विच की ये शब्द दे आसरे ते सिख घड़दा है अपने मन, ते घड़े हुए मन की की पहचान है? अंदरों गलत फुरने नहीं पैदा होंगे, गल खत्म। जेड़े फुरने पैदा होंगे चंगे पैदा होंगे। बुद्धि घड़ी गई की पहचान है? गलत फैसला नहीं करेगी, गलत निर्णय नहीं करेगी, जो फैसला करेगी बिल्कुल सही करेगी, मजाल ही गलत हो गया। चित घड़िया गया है की पहचान है? वो सही गल्लां नूं याद करेगा, चंगियां गल्लां, माड़ी नहीं, चंगी याद विच बैठा होगा। ते अहंग भी, हंकार भी घड़ा गया, अहंग भाव। जिस दिन हंकार घड़िया जांदा है, हंकार अणख बन जांदा है, गैरत बन जांदी है,
हंकारी भी नहीं झुकता, अणखीला भी नहीं झुकेगा। इतनी मैरज कर दें, हंकारी नहीं झुकेगा एक मजलूम दे अगो, एक गरीब दे अगो, एक भगत दे अगो, एक गुरु दे अगो, हंकारी नहीं झुकेगा। पर जिहड़ा अणखीला है, गैरतमंद है, वह भी नहीं झुकेगा जालम दे अगो, दुराचारी दे अगो, ठग दे अगो नहीं झुकेगा। जो जालम दे अगो झुक गया है वह अणखीला नहीं है। इतनी मैरज कर दें। जिहड़ा गुरु दे अगो झुक गया है, सिख दे अगो झुक गया, वह हंकारी भी नहीं है। जो दिसे गुरसिखड़ा तिसने उन्हों लागो पाए जियो। जो गुरु दे अगों झुक गया है, जो सिख दे अगों झुक गया है, यह हंकारी नहीं है। झुकण का मतलब है मैं सिखी कबूल करना, झुकण का मतलब है ए गुरु मैं तेरी गल प्रवान करना, यह हंकारी नहीं है। तो जिहड़ा जालम दे अगों झुक जाए, दुराचारी दे अगों झुक जाए, वह अणखीला नहीं है, वह गैरतमंद नहीं है। औरंगजेब दे अगों सारा हिंदुस्तान झुक गया, गुरु गोबिंद सिंह जी नहीं झुके, नहीं झुकना, गल खत्म। ते जे किधरे औरंगजेब दे अगों गुरु गोबिंद सिंह जी भी झुक जाते, हिंदुस्तान की तवारीख कुछ होर होनी सी, हिंदुस्तान की हालत कुछ होर होनी सी, सिलसिला कुछ होर का होर बन जाना सी। औरंगजेब ने एक हुक्मनामा समुचे हिंदुस्तान विच करवाया, एक डंडोरा कि कोई हिंदू गले विच शस्त्र नहीं धारण कर सकता, कोई हिंदू सीस ते कलगी नहीं ला सकता, कोई हिंदू घोड़े की असवारी नहीं कर सकता, कोई हिंदू झटका नहीं कर सकेगा। झटका हिंदू करते सन, शायद आपको पता होगा, राजपूत करते सन। गुरु गोबिंद सिंह जी तो पहले का वाक यह मौजूद है, झटका राजस्थान विच अज भी है, हिंदू करते हैं राजपूत। औरंगजेब ने हुक्मनामा जारी करा दिता, कोई हिंदू झटका नहीं कर सकेगा, इस्लामी शरा के मुताबिक ही लेना पेगा मास, झटका नहीं कर सकता। क्यों? झटका करेगा शस्त्र रखेगा, शस्त्र रखेगा तो फिर वो अणखीला भी बने। कोई हिंदू झटका नहीं कर सकता, कोई हिंदू घोड़े की सवारी नहीं कर सकता, सीस से कलगी नहीं ला सकेगा, और कोई हिंदू अपनी बरात के अगों बाजे नहीं बजा सकता। यह हुक्मनामा जारी हो गया समुचे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान सहम गया। आनंदपुर साहब तो एक सदा बुलंद हुई, ऐ औरंगजेब मैं सीस ते कलगी लावांगा, मेरे सिख भी लाणगे, भावे लोड़ नहीं सी, मैं घोड़े की सवारी करांगा, मेरे सिख भी करनगे, मैं शस्त्र धारण करांगा, मेरे सिख भी करनगे, और मैं झटके की प्रथा नूं भी जारी करांगा, तेरा कोई हुक्म मनण नूं मैं तैयार नहीं। और हिंदुस्तान दे तवारीखदान कहिंदे ने जे किधरे यह हुक्म आनंदपुर साहब तक भी पहुंच जाता, और इस हुक्म की लपेट विच किधरे आनंदपुर साहब भी आ जाता, अज हिंदुस्तान की तवारीख कुछ होर होनी सी, गल कुछ होर होना सी। ये किसी की जरूरत है, नहीं झुके, नहीं झुकना। जफरनामे में बड़े सुंदर वाक ने, मैं थोड़े सामने रखा। अणखीले बंदे दी ते हंकारी बंदे दी पहचान है, और मैं फिर अर्ज कर दिया, हंकारी भी नहीं झुकेगा, अणखीला भी नहीं झुकेगा। अणखीला नहीं झुकेगा जालम दे अगों, मजलूम दे अगों झुक जाएगा, गरीब दे अगों झुक जाएगा, गुरु दे अगों झुक जाएगा, सिख दे अगों झुक जाएगा, पर हंकारी नहीं झुकेगा, ना गुरु दे अगों, ना मजलूम दे अगों, ना सिख दे अगों, ना संगत दे अगों नहीं झुकेगा। हंकारी दोवें नहीं झुकते। हंकार जिस वक्त घड़िया जाता है अणख बन जाता है, मन जिस वक्त घड़िया जाता है गलत फुरने नहीं पैदा होते, बुद्धि जिस वक्त घड़ी जाती है गलत फैसले नहीं करती, चित जिस दिन घड़िया जाता है गलत गल्लां नूं याद नहीं करता, ते अहं हंकार जिस दिन घड़िया जाता है वह गैरत बन जाती है, अणख बन जाती है। इकबाल कहिंदा है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इकबाल कहिंदा अपनी अणख इतनी मजबूत कर, इतनी बुलंद कर कि रब नूं ही पुछना पए ए बंदे दसते सही तेन चाहिदा की है, तू किवें हाथ जोड़ के खड़े आवे ए खुदा मैनू ए दे, मैनू ए दे, मैनू ए दे। इकबाल कहिंदा ए गल जची नहीं, तू अपनी अणख इतनी बुलंद कर कि रब दे अगों भी मंगता क्यों खड़ा होए, तू उसका पुत्र है। ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਤੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਖੜਾ। ਤੂੰ ਇਤਨੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ, ਖੁਦੀ ਕੋ ਕਰ ਬੁਲੰਦ ਇਤਨਾ ਕਿ ਹਰ ਤਕਦੀਰ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਸੇ ਖੁਦ ਪੁੱਛੇ ਬਤਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਗਤ ਅਣਖੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ, ਜਾਬਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਜੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਢੇਟਾਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ। ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਝ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨਵੇ ਲਾ ਲਓ। ਬੜੀ ਜ਼ੁਰਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਚੰਦ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਖਤਮ, ਤੇ ਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਰਨੈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਿਰੇ ਜਰਨੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਈਏ, ਜਾਬਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ। ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਰ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਢਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਰਨੈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਛੀ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਨ, ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸਨ, ਠੰਡੀ ਰੇਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਪੈਦਲ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕੱਪੜੇ ਫਟ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਝ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰ ਦਰ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੈਂਚੀ ਦੀ ਹੇਠ ਕਰ ਛੱਡਦੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਫਕੀਰ, ਤੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੁਰਤ ਵੇਖੋ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਤੇ ਕਬੂਲ ਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਜ਼ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ੰਦਈ ਐਸ਼ੋ ਅਰਸ਼, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਘਾਟ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਮਸੰਦਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਔਰ ਹਾਲਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਚਾਰਪਾਈਆਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਅੰਨ ਧਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਆਪ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ, ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਟੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਲੱਭੇ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਈ। ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਬੇਸਣ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖੇ, ਰੋ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਚਾਰ ਪਾਈਆਂ ਤਖ਼ਤ ਸਭ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। भांडे साजो समान बिस्तरे सब बाबा पृथ्वी चंद मसंदा का टोला नाल लिया के चुक के लै गया से, बिल्कुल लुटेरिया की तरह। थले गोए बैठे सन ते ज्यों अगों प्रसादे रखे ते जगत माता गंगा रो पई। सतगुरु समझांदे ने शब्द कानड़े राग गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है, रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रेसंग सूख बिहार। ऐ सखी रोना, रोना केड़ी गल दा, भोजन रुख है इस वास्ते रोनी है, जमीन दे उत्ते अज सोना पै रहा है इस वास्ते रोनी है, रोना। पृथ्वी चंद धन लुट के लै गया, अन्न लुट के लै गया, बिस्तरे लुट के लै गया, पर इन्हां सारियां दातां नूं देण वाला जिहड़ा परमात्मा उह ते मेरे हिरदे च बैठा है, उहनूं ते लुट के नहीं लै गए, उह ते मेरे कोल। रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रे संग सूख ब्याज। कितना विश्वास, कितनी सिद्ध, कितना भरोसा। साहिब कहिंदा मेरा खुदा मेरे नाल है, मैं उस आसरे ते लड़ांगा। पर अहलकार आलम सी, कहन लगा महाराज गल है, तुसी फकीर हो ते संत, खुले रूप च तुसी नहीं कबूलिया कि मेरी हार होई, तुसी एक पे कहंदे हो मेरा खुदा मेरे नाल है ते मैं लड़ांगा। लड़ाई हुंदी है शस्त्रां नाल, वस्त्रां नाल, धन नाल, संपदा नाल, किलियां दे नाल, ये ते है नहीं, ये थोड़े कोल नहीं। और तुसी ये भी खुले रूप च कबूल करो, सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। साहब कबूल कर देना, जफरनामा पढ़ोगे तो दंग रह जाओगे, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की रचना। साहब उठे कहने, चहा शुद्ध के चूं बच्चे गां कुश्ता चार के बाकी बमां दस्त पेचीदा मार। वो की होया, चार बच्चे मार छड़े की होया, इनू कोई मैं महानता नहीं देता। तुसी आखोगे कि मेरा दिल ढह जाएगा, कंब जाएगा, चहा शुद्ध की होया, कुछ भी नहीं, इतने बिल्कुल कुछ भी नहीं होया। चहा शुद्ध के चूं बच्चे गां कुश्ता चार के बाकी बमां दस्त पेचीदा मार, चे मर्दी के अगर खमोशा को नहीं के आतिश दमारा फिरोजा को नहीं। उत्थे साहिब कहिंदे ने एक बलदी हुई अग दे चों चार चिनगारियां बुझा देनियां ते तेल पा के होर भड़का देना, यह कोई मर्दानगी ते नहीं, यह कोई सियाणप ते नहीं। चार बच्चियां दी मौत नूं मैं सिर्फ इतना ही समझदा कि भांबड़ बलदी हुई अग दे चार चिनगारियां ही बुझियां, होर कुछ नहीं, मैं कोई मानता नहीं देता। खुद अंदाजा लगाओ कितने वड्डे जिगरे दा ये महापुरुष मालिक होवेगा, कितना वड्डा विशाल इसका गुरदा है, इसका जिगर है, इसका सीना है, जो इस ढंग नाल मत्था मार रहा है, एक जालम दे नाल टकरा रहा है। पर अगों भी चर्चा करने वाला एक आलम है, वह कहिंदा महाराज मेरी गल विचे रह गए, तुसी खुले रूप विच कबूल करो मेरी हार हुई है, और वाकई थोड़ी हार हुई है। और संत का एक कम है सच बोलना, तुसी संत हो, तुसी फकीर हो, कबूल हो कि वाकई कुछ नहीं। और बोल बड़े कीमती ने जेड़े मेरे पातशाह ने कहे ने, संगे बदगो गर अगल कासा है जरी शिकंद। चूंकि औरंगजेब के ओदे अहलकार परशियन तो बिना होर कुछ नहीं समझते सन, ते परशियन दे महान आलम गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जफरनामा परशियन दे उचारण किया, संगे बदगो गर अगर कासा है जरी शिकंद कीमत संघ ने फजायद वगर कम न छोड़। साहब उत्थे कहिंदे ने, मैं मनदा अगर कोई भैड़ा बदकलाम बंदा जालम बंदा पत्थर चुक के सोने दे कासे नूं तोड़न दी कोशिश करे, तां मैं मनदा सोने दा कासा टुट जाएगा, पत्थर नहीं टुटे, मैं मनदा इस गल नूं मनदा। पातशाह दी इलमियत इत्थे टपकदी पई है कि कितने आप आलम ने कहण दा ढंग कितना निराला है, कितनी खूबी दे नाल आप औरंगजेब के सामने यह सब कुछ रख रहे हैं। साहब कहना, मैं मनना अगर कोई पत्थर चुक के एक सोने के कासे नूं तोड़न की कोशिश करे, टुट जाएगा सोने का कासा, पत्थर नहीं टुटेगा। पर साहब कहना, कीमत संघ ने फजाए वजर कम न छू, पत्थर की कीमत कोई वधनी नहीं, सोने की कीमत कोई घटनी नहीं। मैं मनना तू सोने का कासा तोड़िया है। गुरु तेग बहादुर साहब, मेरे मासूम बच्चे, तू बड़े बड़े जरनैल सिख संत सिपाही सोने के कासे तोड़े ने, मैं मनना और टुट गए ने, सोने के कासे टुट गए ने। मैं ये भी मनदा पत्थर नहीं टुटिया जिस पत्थर नाल तू तोड़े ने, पर पत्थर की कीमत कोई वधी नहीं, सोने की कीमत कोई घटी नहीं। ताओ जिंदगी लोग इन्हों शहीदां नू याद करके जिंदगी की प्रेरणा लैणगे, जीवन की प्रेरणा लैणगे, और तेरे उपर ताओ जिंदगी फिटकारा ही पैणगी। कहिंदे ने इस जफरनामे नू पढ़ के सुख की नींद औरंगजेब नहीं सो सकिया सी, तड़पदा ही रहा भई ये की कर बैठा मैं, मेथों अनर्थ हो गया, मेरी वाकई कीमत कोई वधी नहीं और उस महापुरुष की कीमत वाकई कोई घटी नहीं जिहड़ी मैं घटाने की कोशिश की थी। वो ते नहीं घटे। हुण सोना टुट जाए तो कोई पित्तल थोड़ी बन जाता, सोने उहदी कीमत थोड़ी घटेगी। कीमत संग ने पदाए वजर कम न छोड़, अहम घड़िया जाता, शर्म खंड विच बंदा अणखीला हो जाएगा, हंकारी नहीं अणखीला, हंकार मिट नहीं सकता, इहनू बदलना पएगा। तुसीं आखो हंकार अंदरों कढ दईए, नहीं निकलेगा, यह रहेगा। ये दान करांगे दान का अहंकार हो जाएगा, ज्ञान करांगे ज्ञान का अहंकार हो जाएगा, सेवा करांगे सेवा का अहंकार हो जाएगा, कीर्तन करांगे कीर्तन का अहंकार हो जाएगा, कथा करांगे कथा का अहंकार हो जाएगा। यह हर थां तो पैदा हो जाता है, पर जिहदा अहंकार घड़िया जाए अणख बन जाता है गैरत खुदी, वह बंदा नहीं झुकेगा। एक होर निक्की जी गाथा कह के मैं समाप्ति करां। ते सिकंदर लोधी नूं गल चंगी नहीं लगदी सी भी हजारां बंदियां दा कट हो जाता है, ये कुछ ऐसा वैसा बोल के बागियाना तबीयत भी पैदा कर सकता है, हिंदुस्तान में बगावत करा सकता है। लिहाजा नामदेव नूं पकड़ के जेल विच पा दिता, ते बहाना की बनाया, तू मेरी मोई होई गऊ जवा तां ते तैनू मैं मनांगा तू संत है भगत है, ते जे नहीं ते निरा ही पखंडी है। एवें हजारां बंदियां दा वक्त जाया करदा, एवें हजारां मनुखां नूं पिछे तोरी फिरदा। ते नामदेव नूं कह दिता इतनी गल है ए जीवा। नामदेव कहण लगा नहीं, हमरा किया कछु ना होए, कर है राम होए है सो। ये जन्म ते मरण परमात्मा दे हथ च, मेरे हथ च नहीं, जोर ना जीवन मरन ना जोर, परमात्मा दे हथ च। हुण असी मकान बनाना होवे ना ते मकान तो पुछदे नहीं तू बनना भी चाहना है कि नहीं, ते मकान नूं ढाणा होवे असी पुछते नहीं तू ढहना भी चाहना है कि नहीं, रब साथों नहीं पुछता तू जमना भी चाहना है कि नहीं, रब साथों नहीं पुछता तू मरना भी चाहना है कि नहीं। जोर ना जीवन मरन ना जोर, ये जमना मरना उसने अपने हाथ च रखे, अपने हाथ में इतने साड़ी मर्जी नहीं, इतने साड़ा काबू नहीं। जोर ना जीवन मरन ना जोर। नामदेव ने कह दिता है जन्म मरण हमरे वस ना है, ये मोई होई गऊ मैं नहीं जवा सकता, ये मेरे वस तो परे दी गल, ये परमात्मा के हाथ च, ये राम के हाथ च। तो शहनशाह ने कह दिता अच्छा फिर सवेरे सूरज चढ़न तो पहले मैं तेनू कतल कर देना, तू एवें पखंडी है, एवें हजारां मनुखां का वक्त जाया कर दें, जिथे जाना हजारां का इकट्ठ करा कर लेना। अंदर तो उसकी यही गल सी किधरे बगावत ना करावे, पर उन्हों बहाना लग पिया नामदेव नूं मारन दा। दिल्ली के पतवंते बंदे बादशाह कोल पहुंच गए, आखन लगे इस तरह की कीमती मनुख कदी कदाई आउंदे ने संसार दे, कदी कदा ये बड़ा कीमती बंदा है, ये बड़ा कीमती मनुख है। बदकिस्मती यह है कि भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आए, जोड़ जुड़दा ही नहीं, कदी मेल बनदा ही नहीं। खास करके संसारी तो मुराद हंकारी, ते राजनीतिक तो ज्यादा और कौन हंकारी होगा, वो हंकारी हमें वो टकरांदा है, वो कहिंदा पूजा ते मेरी होनी चाहिए एदी क्यों हो रही, हुक्म ते मेरा चलना चाहिए एदा क्यों चलता, इकट्ठ ते मेरे आले दुआले होना चाहिए एदे आले दुआले क्यों होंदा, तो संघर्ष हो जाता है, टकराव हो जाता है। सिकंदर लोधी कहण लगा नहीं, ये कीमती मनुख नहीं है, कदा ही नहीं है। दिल्ली के पतवंतियां ने बड़े तरले लाए और वह सोना ते चांदी लैके गए, ते कहण लगे बादशाह नामदेव दे शरीर का जितना वजन है ना असी उतना सोना देंदे इनू छड़ दे। इत्थों पता चलता है कि दिल्ली दे पतवंते बंदियां दे अंदर नामदेव का कितना सन्मान सी, कितनी इज्जत सी। वह बादशाह बढ़ा के माल लौता दोजक पर, लंबी चौड़ी कथा है, गुरु ग्रंथ साहब मैं संक्षेप दे करदा, بادشاہ کہنے لگا نہیں مال لے کے نہیں چھڈنا اس نے سونا لے کے نہیں چھڈنا میں دوزخ دے جاواں دھن سمپدا لے کے میں اس بھگت نو نہیں چھڈنا یہ موئی ہوئی گو جواب ہے کہندے نے دلی دے او بھگت جن کہن لگے بادشاہ موئی ہوئی گو تے نام دیو جواندا نہیں تے دھن تسی نہیں لیندے دھن لے کے تسی نہیں چھڈدے پر انہ دوواں گلاں نوں ایک پاسے رکھ کے کوئی تیسرا رستہ کڈ لو جہدے نال نام دیو دی جان بچ جائے لمبی سوچ تو بعد بادشاہ کہن لگا ہاں تیسرا رستہ ہے یہ رام رام کہنا چھڈ دے وے اللہ اللہ بس نہیں اور کوئی طریقہ نہیں یہ کلمہ پڑھ لو یہ بٹھل بٹھل کہنا چھڈ دے وے خدا خدا کے تے آپ اس نوں چھڈ دیں گے دلی دے پتوندے کہن لگے بھائی بھگتا کہہ دے جان بچ جاندی ہے پھر چلیں پھر تو بٹھل بٹھل کہندا رہے پھر تو رام رام کہندا نہیں اتوں تے نکلن دی کر ہوں بھگت بڑے انکھیلے آتے ہیں انکھیلا بندہ جھکتا نہیں کہنے لگے نہیں اے نہیں ہو سکتا اور کہنے لگے ماں جڑی نام دیو جی دے نال سی وہ کہنے لگی پترا کہہ دے زندگی بچتی ہے تو میرا ایک پتر ہے کہہ دے تے پھر تو بٹھل بٹھل آخدا رہی پر اج کہہ دے جان بچ لی اتنا زور ماں پان لگ پئی جوش دے آ کے بھگت نام دیو نے صاف کہہ دیتا نہ ہوں تیرا پونگرا نہ تو میری ماں ہے پنڈ پرے تو ہر گن کر جی تم مینوں بہتا مجبور کریں گے تو پھر میں ماں دا رشتہ توڑ سکدا رام دا نہیں میں بٹھل بٹھل تھا اتوں ایک پریرنا ملتی اگر سچ دے مارگ دے پیو بھی ہوڑے ماں بھی ہوڑے تو اتنے ماں باپ دی گل بھی نظر انداز کرنی سچ دی گل نہیں نظر انداز گرو دی گل نظر انداز نہیں کرنی جے ماں باپ اس مارگ تے تورن جو گرو دا ہے انہاں دا دھنواد شکرانہ ضرور کرنا چاہیے تے جے ماں باپ روک بن جان پھر تے ٹکراؤ ہے پرہلاد اپنے پیو نال ٹکرا بیٹھا سی نام دیو اپنی ماں نال ٹکرا بیٹھا اتہاس سڈے سامنے نہ ہوں تیرا پونگرا نہ تو میری ماں ہے پنڈ پرے تو ہر گن گائے پر ماں آخر نام دیو دی ماں سی نال کتھا سندیا سندیا سیانی بہت ہو گئی سی کہنے لگی پترا میں تے کئی دفعہ سنیا تو اللہ اللہ بھی کردا کئی دفعہ میرے کنا نے سنیا نام دیو دے شبد نے کریم ماں رحیم ماں اللہ تو گنی حاضرا حضور درپیش تو منی دریاؤ توں دہند توں بسیار توں دھنی دے لے ایک توں دگر کو نہیں تو دانا تو بینا میں بچار کیا کری نامے چے سوامی بخشند توں ہری یہ سارے نام اسلامی نے کریم ماں رحیم ماں اللہ توں غنی سارے نام اسلامی ماں کہنے لگی پترا میں تیری رسنا تو کئی دفعہ کریم کریم بھی سنے ہیں کریم رحیم اے بھی سنے ہیں اللہ اے بھی دھن سنی ہے اج کی ہو گیا کہہ دے جان بچ رہی نام دیو کہنے لگے نہیں ماں وہ جڑا میں کہنا اپنی موج کہنا اپنی مستی کہنا کہ اج جڑا آکھاں گا یہ دے دبا ہیٹ آکھاں گا یہ دے گو جھک کے آکھاں گا نہیں اے نہیں ہو سکتا موج میں کہہ سکتا مستی میں کہہ سکتا یہ دے گو جھک کے نہیں کہہ سکتا ظالم دے گو جھک جاواں یہ ہو ہی نہیں سکتا اور جو ظالم دے اگوں جھک جائے وہ سنت بھی نہیں اتنی محنت کر دیں وہ بھگت بھی نہیں وہ کہتا بھگت جو ظالم دے اگوں جھک گیا جو جھوٹ دے اگوں جھک گیا جو فریب دے اگوں جھک گیا جو دوراچار دے اگوں جھک گیا وہ سنت نہیں ہے وہ بھگت نہیں ہے بھگت کدی نہیں جھکے ہنکاری نہیں جھکتا بھگتاں دے اگوں بھگت نہیں جھکتا ظالماں دے اگوں اتہاس ہے سڈے تو بھگت دے اندر ہنکار نہیں اس چکر چ کدی نہ پینا بھگت انکھیلے نے ہنکار گھڑیا گیا کتھے گھڑیے سرت مت من بدھ سرت گھڑی گئی من گھڑیا گیا بدھ گھڑی گئی بھاو سرت چیتے شکتی یاداش شکتی کا کیندر بھی فلانے کی سرت جڑی ہوئی فلانے کا چیتا نام دے چا یاد پیا کر من بدھ چت اہم اے چتشٹا انتہ کرنا گھڑے ہوئے من کی اے پہچان وہ جتھے بھی بیٹھے گا اندر چنگے پھرنے پیدا ہوں گے وہ جتھے بھی بیٹھے گا فیصلہ صحیح کرے گا غلط فیصلہ نہیں کرے گا وہ جتھے بھی بیٹھا ہوئے گا صحیح یاداں دے چھوئے گا اور وہ ہر وقت انکھیلا ہوئے گا جھکے گا بالکل نہیں ظالم دے اگوں جھوٹ دے اگوں انرتھ دے اگوں بالکل نہیں جھکے گا وہ آکڑے ہی رہے گا अणख करके, खुददारी करके, खुदी करके, शर्मखंड की यह पहचान। और फिर मैं अर्ज कर दिया, अगर इस तरह का नहीं, मन में गलत फुरने भी पैदा होते हैं, तो गलत गल्लां असी याद भी करते होइए, तो अंदर हंकार भी हो, फैसले भी साथों गलत हो जाते होन, असी शर्मखंड के मालिक नहीं हाँ, शर्मखंड तक नहीं पहुंचे। तो सानू इतना भी ना पता चलता हो कि परमात्मा एक व्यक्ति नहीं, एक शक्ति है पसरी, इस तरह का बोध नहीं, तो फिर असी ज्ञान खंड भी कोई नहीं। तो जे खाने पीने का सही इस्तेमाल नहीं, वेखन बोलना सुनना जिंदगी का इस्तेमाल ही सही नहीं, तो असी धर्मखंडी भी कोई नहीं। अगों है कर्मखंड, फिर अगों है सचखंड, जिदी व्याख्या गुरु नानक देव जी महाराज करदे। पर समय की बंदिश नूं सामने रखना भी बड़ा लाजमी है, तो वक्त हो गया। शर्मखंड तक दी इतनी पहचान, बुद्धि घड़ी गई, मन घड़िया गया, चित घड़िया गया, अहं घड़िया गया। खुलासा इसका मैं फिर भी थोड़ा जिहा कर दिया। ते कर्मखंड सचखंड ये उपर दे पड़ाव ने, अद विचकार तो मनुख लंघ गया एन रब दे नेड़े, ते सचखंड विच जाके लीन हो गया। पर शर्मखंड एक ऐसी बिखड़ी खाटी है, इत्थे कई भटक जांदे, क्योंकि इहनूं शर्मखंड महाराज ने कहा बड़ा मेहनत का खंड, बड़ी बिखड़ी घाटी, बहुत बिखड़ियां पौड़ियां जिथों लंघना है, जिथों चढ़ना है। शर्मखंड की बाणी रूप, शर्मखंड मेहनत का खंड, इत्थे घड़ना है, ते घड़ना ही बहुत औखा है। अपने मन जब घड़िया जाता है काबू च होगा, गलत फुरने नहीं पैदा होंगे। मैं देखता जिड़ी चीज काबू च हो ना, बंदा उस तो सुख लेंदा, ते जिड़ी चीज काबू च नहीं उस तो सुख नहीं लिया जा सकता। बहुत कदी मुताला करके वेखना, बंदे ने घोड़े नू पकड़िया ते घोड़े दे मुंह च लगाम पा दिती है, उठ तो कम लिया बंदे ने उठ दे नक दे च नकेल पा दिती है, हाथियां तो मनुख ने कम लिया ते हाथी दे सिर दे अंकुश रख दिता है, हुण अंकुश ना होवे हाथी दे सिर दे च हाथी बेकाबू, लगाम ना होवे घोड़े दे मुंह दे च घोड़ा बेकाबू, नकेल ना होवे उठ दे नक दे च उठ बेकाबू, बैल बेकाबू। थोड़ी कार है हुण इहदे च ब्रेकां ने ना होवन, इस तो सुख लै सकोगे? जिहड़ी चीज चल रही है रुकना भी चाहिए, उहदे नाल रोकथाम का आला भी चाहिए। हुण रेल है भावें सारे नहीं चला सकते, पर रोक ते हर बंदा सकदा ना, हर डब्बे च पुल चेंज खिंच लो ते रोक, चला नहीं सकते सारे रोक सकते, चलण दे नाल नाल रुकना भी बड़ा लाजमी, रोकना भी बड़ा लाजमी। जिथे लोड़ पै रोकी, गलत पासे जाए रोकी, मन लोचे बुरियाईयां गुर शब्दी एह मन होड़िए। हुण मैं देखदा बंदे ने हाथियां नू काबू च कीता है, घोड़ियां नू काबू च कीता है, बैलां नू काबू च कीता है, और उठा नू काबू च कीता है, रेलां मोटरां गड्डियां बंदे दे काबू च ने, बंदे दा मन बंदे दे काबू च नहीं, जिधर चाहे भटकदा फिरदा है, कोई काबू च नहीं, ब्रेकां है नहीं कोई, और बिना ब्रेक की जिहड़ी गड्डी होवे खिमा करनी कईआं नू लिताड़ेगी। बिना ब्रेक के जिहड़े बंदे गुरुद्वारे आ जांदे बड़ा ही अनर्थ कर देन, बड़ा ही अनर्थ, बिना ब्रेक ही कोई नहीं, कदी इधर पै टकरा देन, कदी उधर पै टकरा देन, कदी इधर पै अनर्थ कर देन, कदी उधर पै अनर्थ कर देन, ब्रेक ही कोई नहीं, शब्द की ब्रेक कोई नहीं जिहदे नाल अपने मन नू रोक लैन। मन लोचे बुरियाईयां गुर शब्दी एह मन होड़ी, जिहनू अपने मन नू होड़न की जाच आउंदी है उह इत्थे बैठ के जाप ते करेगा, इत्थे बैठ के कदी शराब पी के नहीं आएगा, ना पीएगा, ना ताश खेडेगा, क्योंकि उन्हें मन नूं रोकण दी जाच आ गई। मन लोचे बुरियाईयां गुर शब्दी एह मन होड़ी, उन्हें रोक लिया, अपने ब्रेकां ला लईआं, उहदा मन उसके काबू च है, और जिसका मन जिसके काबू च है ऐसा मनुख हर थां दे हर वस्तु का सही इस्तेमाल करेगा, कतई गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। शर्मखंडी मनुख की यह पहचान है। खंडा की जिहड़ी व्याख्या गुरु नानक देव जी ने की उह पढ़ के सिर्फ मैं तुहानूं सुणा रहा, एक टीका एक तर्जमा कर रहा, इहदे च मेरे निजी कोई ख्याल नहीं, निजी कोई विचार नहीं, सिर्फ उन्हां खंडां दे जो कुछ बाबे ने लिखे है एक पाठी दी तरह पढ़ के मैं तुहानूं सरवण करा रहा। कि कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसार नहीं अंत परमगत पाए, कोई सुन के अपना मन जोड़े, कोई सुना के अपना मन जोड़े, कबीर कहन परमगति मिल जाए। ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਜੁੜੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜੁੜੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਵਰਦਾਨ, ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕੋ, ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜੁੜ ਸਕਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਰਮਖੰਡ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਯਾਚਨਾ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।